awakening to a new way of living.
Om Shanti. Today we are going to talk on a topic, balancing life through spirituality. So, first we will see what do we mean by really these words, balancing life and spirituality. These two are the key words in today's talk. So, what is a good balancing life? जब भी हम balance की बात करते हैं तो मुझे वो सर्कस याद आता है। जब हम छोटे थे तो सर्कस जाते थे, जिसमें कि दिखाते हैं कि दो पिलर्स के बीच में एक रोप कस दिया जाता है और उस पर एक छोटी सी बच्ची उस पर रोप पर चलती है। उसके हाथ में एक बैम्बू होता है जो कि उसको बैलेंस में मदद करता है, और वो बच्ची एक पिलर के एक एंड से दूसरे एंड तक अपनी जर्नी कंप्लीट करती है। स्टार्टिंग में वो बिना कुछ लिए करती है, फिर बाद में अपने सर पर मटके भी रखती है और डिफरेंट थिंग्स वो ऐड करती जाती है। एंड जब उसका बैलेंस हम लोग देखते हैं तो नीचे से ताली बजाते हैं, वी कॉल इट ए सक्सेसफुल जर्नी। तो इसी तरह व्हाट इज ए गुड बैलेंसिंग लाइफ, इस यात्रा रूपी जर्नी में हमारी जिंदगी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके बीच में एक हार्मोनी होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे कि वो बच्ची की हर चीज, उसकी आंख, उसके हाथ, उसके पैर, हर चीज के बीच में एक कोऑर्डिनेशन है, एवरी ऑर्गन इज कोऑर्डिनेटेड। इसी तरह लाइफ की जर्नी में जो हमारी लाइफ के जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, मेनली वर्क, अवर रिलेशनशिप्स, फैमिली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल अवर सेल्फ, जिसको कि हम जनरली बहुत पीछे रखते हैं, जब इन तीनों एस्पेक्ट्स के बीच में एक हार्मनी है, एक कोऑर्डिनेशन है, तो इससे जो आउटपुट आता है, व्हाटएवर वी गेन, व्हाटएवर बेनिफिट वी गेन थ्रू दैट, वो बेनिफिट हम एक दूसरे को सपोर्ट करने में और स्ट्रेंथन करने में, एक दूसरे को मजबूत करने में यूज करते हैं। और जब ऐसा होता है तो वी कॉल्ड इट ए सक्सेसफुल लाइफ। सक्सेसफुल लाइफ मीन्स सक्सेसफुल इन एवरी एस्पेक्ट। अभी आजकल क्या होता है, हम यूज करते हैं, ही इज वेरी सक्सेसफुल एट वर्क बट फेलियर इन दिस, सो दैट पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड सक्सेसफुल। सक्सेसफुल मीन्स सक्सेसफुल, दैट्स ऑल, सक्सेसफुल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। सेकेंड वर्ड इज द स्पिरिचुअलिटी, हाउ स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स मी इन दैट, सो दैट वी नीड टू फाइंड आउट। लाइक वो जो बच्ची को हमने देखा, तो इस पूरी जर्नी में हम देखेंगे अभी कि बच्ची पूरे टाइम वो बेम्बू से बैलेंस करती है, तो बेम्बू वी कैन टेक इट एज अ स्पिरिचुअलिटी। सो ये स्पिरिचुअलिटी हमारे को किस तरह हेल्प करती है, तो वेन एवर वी टॉक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है, स्पिरिचुअल पीपल माने या तो उनकी ड्रेस अलग है, उनकी वेशभूषा अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका चलना करना सोचना सब कुछ अलग है, एक अलग ही दुनिया है, विच इज ए मिथ। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी इज, वी कैन कॉल इट ए सक्सेसफुल जर्नी। स्पिरिचुअलिटी डजेंट मीन्स कि वील हैव टू लीव दिस, वील हैव टू लीव दिस, हमारे को बिजनेस कम करना पड़ेगा, हमारे को काम कम करना पड़ेगा, हमारे को ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब आज से 11 साल पहले इस नॉलेज में आया था, इस नॉलेज को मैंने जब एक्सेप्ट किया, तो मैं भी उससे पहले यही सोचता था, स्पिरिचुअलिटी मींस कुछ चेंज करना पड़ेगा। और ब्रह्मा कुमारी इसको देखकर तो ऐसा लगता था व्हाइट कपड़े कौन पहनेगा, स्पिरिचुअलिटी मींस व्हाइट कपड़े पहनना पड़ेगा, दिस इज नॉट ट्रू। आज से 11 साल पहले जब मैंने स्पिरिचुअल नॉलेज ज्वाइन की थी, इसको नॉलेज को जब मैंने अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट किया, तो दैट टाइम आई वॉज रनिंग ए वेरी स्मॉल क्लिनिक इन द सिटी एंड ओवर द टाइम ये 11 साल की इस जर्नी में नाउ आई हैव ए 50 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व्हिच आई एम रनिंग. ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक जो मिथ है ना कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हमारे को काम कब करना पड़ता है या हमारे को पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा कोई खराब चीज मान लिया है, दीज ऑल आर मिथ. स्पिरिचुअलिटी नेवर सेज कि यू लीव ऑल दिस. स्पिरिचुअलिटी मीन्स यू जस्ट चेंज योर लाइफ स्टाइल, यू जस्ट चेंज द वे यू आर डूइंग इट, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी को हमने हमेशा एक अनसाइंटिफिक चीज माना, और जब भी स्पिरिचुअलिटी वर्ड आया तो उसको हमने बिना जाने बिना पहचाने बिना उसको यूज किए लाइफ में हमने उसको रिजेक्ट कर दिया. इट्स वेरी अनसाइंटिफिक. स्पिरिचुअलिटी तो पूरी अंधश्रद्धा है, कोई कहता है ये कुछ मानो, ये करो वो करो, तो उसको हमने एक अनसाइंटिफिक वे में रिजेक्ट कर दिया, विच वी शुड नॉट नेवर हैव डन. बीइंग साइंटिफिक पीपल वी शुड ऑलवेज see the things, understand the things, we should always experiment the thing and then only we should reject or accept it. So that's what we have done. Spirituality ko humne life mein jab use kiya, uske jo parinam dekhe usko apni day to day life mein use kiya, like that bamboo. Bamboo usko jab bhi bachchi ko us rope par kuch bhi balance dagmagata to bamboo usko help karta hai and bamboo puri journey mein uske saath rehta hai. ऐसा नहीं है कि बेम्बू उसने स्टार्टिंग में ले लिया फिर बीच में छोड़ दिया, क्योंकि वो बेम्बू उसको हेल्प करता है. इसी तरह स्पिरिचुअलिटी हमारी पूरी जिंदगी में हमारे को हेल्प करती है, हमारी लाइफ स्टाइल ही स्पिरिचुअल हो जाती है. वी कॉल इट ए स्पिरिचुअल जर्नी. नाउ इट इज व्हेन वी टॉक ऑफ बैलेंस द पीपल सेज की बैलेंस बिटवीन वर्क लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ और बैलेंस बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ, विच इज नॉट ट्रू. इसके जब ये सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि देयर आर टू लाइफ्स, हमारे को दो डिफरेंट लाइफ है, वर्क लाइफ हमारी अलग है, पर्सनल लाइफ हमारी अलग है, फैमिली लाइफ अलग है, और हर एक लाइफ एक अलग अलग ढर्रे पर चल रही है, विच इज नॉट ट्रू. एक्चुअली बैलेंसिंग लाइफ इज व्हेन वी आर हैप्पी, वी आर सक्सेसफुल एंड वी आर एंजॉयिंग लाइफ इन एवरी एस्पेक्ट, whether it is personal, whether it is family, or whether it is work. So how this spirituality helps us? Spirituality is a science. It's a deep science. Like in science, whatever we do, we experiment with the things, and then we accept or reject. So science mein hum jo experiment karte hain, wo hamare sab outer world ke saath hai. Spirituality bhi ek science hai, jo ki हमारे एक्सपेरिमेंट है हमारे इनर वर्ल्ड के साथ, हमारी वैल्यूज, हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस कितना है, हमारी जिंदगी में ट्रस्ट कितना है, फेथ कितना है, हाउ मच वी रिस्पेक्ट ईच अदर, हाउ मच वी ट्रस्ट ईच अदर. स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स मी इन प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स, कि मैं अपनी लाइफ में किस चीज को कितना प्रायोरिटी दे रहा हूं. जैसे अगर अभी हम आजकल किसी से पूछते हैं कि व्हाट इज योर प्रायोरिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट आंसर माई प्रायोरिटीज आर माई वर्क, फिर बोलिंग माई फैमिली, माई सोसाइटी एंड इन लास्ट सेल्फ, विच इज नॉट ट्रू. बट स्पिरिचुअलिटी टेल्स मी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड गिव अटमोस्ट प्रायोरिटी टू माई सेल्फ, बिकॉज प्रायोरिटी जब हम अपने को देते हैं, इफ आई एम एबल टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ देन ओनली आई कैन टेक केयर ऑफ अदर्स, एंड दैट वी ऑल नो. We all know this thing. Very logically we accept it also. लेकिन उसको हम life में चलते नहीं है. जब हम life में उसको incorporate करते हैं, उसको चलना शुरू करते हैं, तब हमारी life जाकर successful और एक balanced life बनती है. तो with spirituality we fix up our priorities. Like if I am giving utmost care to myself, if I am taking care of myself, तो जब मैं अपना ध्यान रखता हूँ तो मेरे जो relations हैं, मेरी जो family life है, वो बहुत beautiful होती है. और वो रिलेशनशिप मेरी फिर मैं जब उस हैप्पीनेस के साथ, उस विस्टम के साथ वर्क प्लेस पर जाता हूँ तो वहां भी मैं उसको यूज करता हूँ. और फिर जो आउटपुट होता है वर्क प्लेस का, वो कई गुना ज्यादा होता है. जैसे कि आप सोचिए, अगर आप घर से निकले हैं, बहुत इरिटेटेड हैं, और बहुत ही एग्रेसिव मूड में गए हैं, तो वर्क प्लेस पे गए, वहां सब पर आप चिल्ला रहे हैं, कई बार हम बिना वजह के भी चिल्ला देते हैं, बिकॉज वी नो वी डोंट हैव वर्क, हमने अपने ऊपर काम नहीं किया होता है। तो जब हम इस तरह पहुंचते हैं तो जो आउटपुट टोटल निकलता है वो बहुत कम होता है। लेकिन इसी चीज को रिवर्स करिए, जब आप घर से बहुत खुश होकर निकले हैं, वी आर वेरी हैप्पी, आप उस समय कितने बाइज होते हैं। जब आप अपने वर्क प्लेस पर पहुंचते हैं तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, जो आपके असिस्टेंट हैं, उनके साथ एक डिफरेंट रिलेशनशिप होती है, और वो आउटपुट जो निकलता है वो एक्चुअली कम समय में कई गुना ज्यादा निकलता है। तो दैट्स हाउ दिस स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस। सबको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए हमारे को अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, आजकल की जिंदगी में टाइम किसके पास है, तो सभी बोलते हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा करो स्पिरिचुअलिटी सिखाना है तो मेरे घर वालों को सिखा दो या मेरे जो साथ काम करने वाले हैं उनको सिखा दो, विच वॉन्ट वर्क। अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर चीज की वो मेरी है, आई लव टू फिक्स अप माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो मुझे जो भी चेंज लाना है वो अपने अंदर ही लाना है, जब मैं अपने अंदर चेंज लाऊंगा तभी चीजें चेंज होने वाली हैं। अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें तो उस समय हमारी जिंदगी में ये सब चैलेंजेस नहीं थे, इतना स्ट्रेस नहीं था, हम ये वर्ड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देते थे। कोई अगर हमको बोलता था चलो मेडिटेशन सीख लें, तो हमारे पास एक चॉइस थी कि चलो मेडिटेशन सीख लें या नहीं भी सीखें। लेकिन अभी अभी जो टाइम है, प्रेजेंट सिनेरियो जो है, उसमें अभी सबको ये महसूस होता है कि मेडिटेशन इज नॉट ए चॉइस, इट्स नाउ हैज बिकम मैंडेटरी पार्ट ऑफ लाइफ। इफ यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ सेल्फ, यू वॉन्ट बी एबल टू टेक केयर ऑफ एनीवन। तो अभी वी कांट से दिस वर्ड, वी हैव टू डिलीट दिस वर्ड फ्रॉम अवर डिक्शनरी कि मुझे टाइम नहीं है। अगर हम अपने लिए अभी टाइम नहीं निकालते हैं तो आगे चलकर हमें बहुत सारा टाइम मिलने वाला है दूसरों के द्वारा। और अभी रिसेंटली ये जो आप देख ही रहे हैं, ये जो कोरोना पेंडेमिक चला है, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ये कह सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अभी इतना टाइम सबको मिला है एंड फोर्सफुली मिला है, ना चाहते हुए भी टाइम मिला है। तो वी कांट से कि मेरे पास टाइम नहीं है। अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें विल हैव टू टेक आउट टाइम फॉर अवर सेल्फ, देन ओनली वी विल बी एबल टू लीड ए सक्सेसफुल लाइफ। टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड, वन इज दिस मटेरियल वर्ल्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड ने ही हमारे को इतना कम्फर्ट दिया है। अगर आज हम यहाँ बैठे हैं, ये जो आवाज भी आप तक पहुंच रही है, जो आप घर बैठे इस लॉकडाउन के टाइम में भी जब ये सब पॉसिबल नहीं है, फिर भी ये आवाज आप तक पहुंच रही है, हम आप तक पहुंच रहे हैं, तो ये सब इस मटेरियल वर्ल्ड की ही देन है, ये टेक्नोलॉजी की ही देन है। हम उसी टेक्नोलॉजी को फिर ब्लेम करने लगते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से स्ट्रेस आ गया है। ना, द स्ट्रेस इज अवर क्रिएशन, इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी आर यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट स्ट्रेस। इफ वी आर नॉट यूजिंग इट वाइजली it will create stress, but if we are using it wisely it is for our comfort only. 15 saal pehle ek hospital run karna ek bahut different baat thi, aur abhi aaj ke scenario mein hospital run karna bahut alag cheez hai. Daily norms badhte ja rahe hain, daily different rules regulation, kuch na kuch naya aata jata hai, aur jo bhi hospital aap logon mein se run karte hain wo achhi tarah jante hain ki hospital run karna abhi kitna डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि बहुत कुछ चीजें ऐड हो गई हैं। एक टाइम था जब हॉस्पिटल आप रन करते थे सिटी में, आपकी एक बहुत अलग बात होती थी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ होता था, भाई डॉक्टर साहब हैं, जो भी कुछ आप काम कराना चाहते थे बहुत इजी हो जाता था। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, हॉस्पिटल रन करना एक बहुत सारा स्ट्रेस आ गया है। तो स्ट्रेस जो आया बिकॉज टू मच ऑफ प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, बहुत सारा प्रेशर है जो कि हम जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ये प्रेशर जो अभी है वो और 10 साल बाद और बढ़ने ही वाला है, तो जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा उतना हमारा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, तो उस प्रेशर को हम कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, एक चीज जो हमारे हाथ में है वो है हमारी इनर पावर, उस प्रेशर को कोप अप करने के लिए जो हमारे अंदर हमें चाहिए शक्ति, आंतरिक शक्ति जिसे बोलते हैं, इनर पावर, वो स्पिरिचुअलिटी हमें दे सकती है। उस इनर पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए मुझे अपना ध्यान रखना है, मुझे मेडिटेशन करना है, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम निकालना है, वो भी स्टार्टिंग में, जब ये जैसे जैसे प्रोसेस चलती जाती, जैसे आपने उस बच्ची को देखा बंबू पर चलते में, स्टार्टिंग में उसको बहुत बैलेंस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जब वो एक बार उस जर्नी पर चल देती है तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। फिर वो बहुत सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती है, मटके भी रख सकती है, उस रस्से पर वो डांस भी कर सकती है। सो दिस इज लाइक स्पिरिचुअल जर्नी। इन स्टार्टिंग यू नीड टू फोकस लिटिल बिट ऑन अवर सेल्फ, बट लेटर ऑन व्हेन वी इनकॉर्पोरेटेड इन लाइफ और व्हेन इट बिकम्स अवर लाइफ, जब हमारी डेली रूटीन में ये सब चीज आ जाती है तो ये सब बहुत ईजी हो जाता है। एंड दैट्स वॉट वी ऑल आर डूइंग at Brahma Kumaris. Then we talk to people ki let's do meditation, let's learn meditation. They say ki time nahi hai, stress itna zyada hai, pressure work ka itna badh gaya hai. To hamare ko yahan ye samajhna bahut zaruri hai ki jo pressure jo badha hai, jo badh raha hai, wo kam nahi hone wala hai kabhi bhi. Aage chalkar ye aur hi zyada badhne wala hai. Agar hum aaj apne liye time nahi nikal rahe hain तो आगे चलकर 5 साल बाद या 10 साल बाद अभी जो टाइम है हमारे पास वो भी नहीं होने वाला है। तो मुझे जो भी कुछ करना है वो आज ही करना है, आज भी नहीं, मुझे अभी से करना है, क्योंकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो इस इक्वेशन को, जो प्रेशर को कोप अप करने का जो तरीका है, जो इनर स्ट्रेंथ है, वो मैं मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लाइफ से मैं उसको बहुत स्ट्रेंथन कर सकता हूँ। वी सो कॉल्ड इंटेलिजेंट पीपल, सोसाइटी में डॉक्टर्स को एक इंटेलिजेंट पीपल माना जाता है। तो इंटेलिजेंट वी आर इन टर्म ऑफ नॉलेज, इन टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। वट एवर आई एम टेलिंग यू इज नथिंग न्यू फॉर यू। I know you know more than that. You know better definitions of spirituality. You know better definitions of balancing life. Whatever I am telling is already heard by you. तो अभी इसको बार बार रिपीट करने से और सुनने से कोई फायदा नहीं है। हम इतना सुन रहे हैं उसके बाद भी चेंज क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमने उसको अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में उस चीज को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। हमने उस चीज को अपनी लाइफ स्टाइल में नहीं लाया, अपने जीवन में नहीं लाया। जरूरत है उसको जीवन में लाने की। नॉलेज सबके पास है, बहुत है, आजकल इतने सोर्स हैं। आप इंटरनेट पर बैठिए, एक गूगल बटन दबाइए, आपको जो भी चाहिए सब कुछ सामने आ जाएगा। एक क्लिक है, बस एक क्लिक दूर है हमारी सारी नॉलेज। लेकिन उस नॉलेज को जिंदगी में लाना, उसको सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रखना है, उसको पहले सुनना है। सुनने के बाद जब वो हमारे थॉट प्रोसेस में आएगा, फिर वो हमारे एक्शन में आता है, हमारे कर्म में आता है, और उसके बाद वी स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विथ इट। और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे को अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, और ये अनुभव ही हमारे जीवन को फिर चेंज करते हैं। अगर मैं आज आपको बोलूं भी कि स्पिरिचुअलिटी से ये फायदा है, ये हो जाएगा, मैंने ये पाया है, तो आप हो सकता है उसको सुने, कल तक आपको याद रहे या 2-4 दिन याद रहे, बट उसके बाद फिर वो वैनिश हो जाना है। तो ये मेरी जिंदगी में कब आएगा? जब तक मैं इसके साथ वर्क नहीं करूंगा, इसके साथ काम नहीं करूंगा, इसको अपनी जिंदगी में नहीं लाऊंगा, उसको अपनी डेली लाइफ में, अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बनाऊंगा, तब तक ये कुछ भी काम करने वाला नहीं है। इसे बोलते हैं ना अनुभव, अनुभव बोलता है। एक बार आपने किसी चीज का अनुभव कर लिया तो वो फिर कभी जाता नहीं है ना। कोई कितना भी बोले ग्लास में ठंडा पानी है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, सब आपने सुने हुए हैं, लेकिन जब तक आपने हाथ एक बार डाल के देख लिया उस पानी में और ठंडा लग गया तो फिर वो ठंडा है, फिर कोई कुछ भी कहता रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अनुभव ही, जैसे हमारे एक हिंदी में कहावत भी है ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, और भी इस कहावत में लोगों ने बहुत कुछ जोड़ा है, और उसकी एक जो लास्ट लाइन है वो जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां अनुभव ही पहुंच सकता है। तो अनुभव इज इम्पॉर्टेंट, देन वी एक्सपीरियंस दिस थिंग इन लाइफ, देन ओनली वी कैन गो अहेड ऑन दिस पाथ। अगर किसी के बोलने से हम चलेंगे तो हो सकता है हम 1 महीने चल रहे हैं, 2 महीने चल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वी विल लीव इट। जब भी कुछ सर्कमस्टांसेस आएंगे, कुछ परिस्थितियां आएंगी, वी कैन लीव इट। बट अगर हमने उसको अनुभव कर लिया है, उसके फायदे को हमने जीवन में आत्मसात कर लिया है, वो हमने महसूस कर लिया है, तो फिर हम उस चीज को कभी नहीं छोड़ते। यहाँ कहने का भाव ये है कि मेरे कहने से या किसी और के कहने से, आप बहुत सारे लेक्चर सुनेंगे इस सीरीज में, किसी के कहने से कुछ नहीं करना है, बल्कि उस कहने को सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रखना है, उसको अपनी लाइफ में लाना है, उसको अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करना है, तब जाकर के इस जर्नी पर हम चल पाएंगे। स्पिरिचुअलिटी मुझे क्या सिखाती है? एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी मुझे सिखाती है हाउ टू गेट कनेक्ट विद द सेल्फ, हाउ टू गेट कनेक्ट विद पीपल, हाउ टू गेट कनेक्ट विद वर्क, एंड इन तीनों के बीच में क्या हार्मोनी, हाउ टू मेंटेन दैट हार्मोनी, इस सामंजस्य को हम कैसे रखें जिससे कि हमारी जीवन रूपी नाव है वो बहुत अच्छे से चले। जीवन को हमने एक नाव कहा है, नैया, जैसे कि शिप होता है ना, यू नो ऑल शिप, शिप इज मेंट टू फ्लो इन वॉटर। जहाज को बनाया ही इसलिए गया है कि वो पानी को पार करे, लेकिन शिप भी कभी कभी डूब जाते हैं। शिप क्यों डूब जाते हैं? सिर्फ इसलिए कभी नहीं डूबता है कि उसके चारों तरफ पानी था, वो बना ही उस पानी पर चलने के लिए, लेकिन जब भी वो पानी उसके अंदर आ जाता है तो शिप डूब जाता है। तो ऐसे ही हमारी जीवन की नैया है, जीवन को नैया इसीलिए कहा गया, जीवन की नैया इस भव सागर में तैरती रहती है। इस भव सागर में तैरने के लिए ही बनी है, उसको मंजिल तक पहुंचना ही है, लेकिन अगर वो पानी इसके अंदर आ गया, वो सागर का पानी यानी कि वो परिस्थितियां, वो समस्याएं, वो अगर इसके अंदर आ गई तो नैया डूब जाएगी। तो उसके लिए आपने देखा होगा कि जब शिप बनाते हैं तो उसके लिए बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं, और वो सेफ्टी मेजर्स ऐसे नहीं है कि बना के किनारे पर रख दिए, जब जरूरत है तब ले आएंगे, वो हमेशा शिप के साथ रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो इज द बिगेस्ट सेफ्टी मेजर एंड इट शुड रन विथ लाइफ। इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ आगे चल के कर लूंगा, अभी तो एज क्या है मेरी, 50 साल के बाद करूंगा, अभी तो हमारे दिन ही क्या है, ये सब मिथ है। स्पिरिचुअलिटी इज ए वे ऑफ लाइफ एंड वी शुड लिव इट डेली, मतलब स्पिरिचुअलिटी शुड बिकम अवर लाइफ स्टाइल। करना क्या होता है? कोई बहुत कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ छोड़ना नहीं है, ये कपड़े नहीं चेंज करने हैं, हमारे को बहुत छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ के अंदर लाने होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि सबसे पहले मुझे अपने आप से ये पूछना होता है कि डू आई नीड टू चेंज, क्या मुझे इन परिवर्तन की आवश्यकता है? क्योंकि जब तक मैं ये आवश्यकता को महसूस नहीं करूंगा तब तक मैं अपने अंदर कभी भी चेंज नहीं लाऊंगा। कोई कितना भी मुझसे कहता रहे, लेकिन मुझे रुककर अपने आप से एक बार ये पूछना पड़ेगा कि मुझे सच में इस परिवर्तन की जरूरत है, और जब मेरा आंसर खुद से अपने लिए हाँ होगा तभी मैं इस परिवर्तन को महसूस करूंगा, उसको परिवर्तन करने को महसूस करूंगा और फिर उस परिवर्तन को अपने जीवन में लाऊंगा। लेकिन एक बात बहुत जो जरूरी है वो ये कि अगर मैंने आज ये चेंज नहीं किया तो मेरी लाइफ जो आज है वो 10 साल बाद वो लाइफ नहीं होने वाली है। 10 साल बाद आई एम गोइंग टू जस्ट रिग्रेट कि मैंने उस समय वो चेंज नहीं किया, और उससे फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। करना क्या है सवाल ये उठता है। आई जस्ट नीड टू टेक आउट यू कैन से जस्ट 1 आवर फॉर माई सेल्फ इन द मॉर्निंग एंड दैट टू इन द बिगिनिंग, बिकॉज प्रैक्टिस स्टार्टिंग में हमें किसी भी चीज के लिए प्रैक्टिस करना ही होती है। 1 आवर टू रिमेन स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, 1/2 आवर फॉर माई बॉडी सो दैट विल रिमेन हेल्थी, एंड 1/2 आवर फॉर माई सेल्फ, माई सोल, फॉर मी सोल, और वी कैन से मेरे अपने लिए, मेरे अपने माइंड के लिए, मुझे उसका भी नरिशमेंट करना है। तो जब मैं ये 1 घंटा अपने लिए अगर आज निकालता हूँ तो मेरी लाइफ इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज, एंड इफ आई एम हेल्दी एंड हैप्पी देन इट्स डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट माई वर्क। ये 1 घंटे जो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये होता है टाइम, हम कहाँ से टाइम निकालें, हमारे पास ऑलरेडी इतना काम है, हमारे पास ऑलरेडी इतने अपॉइंटमेंट्स हैं, मैं कैसे स्टार्ट करूं? अगर मैं ये 1 घंटे अपने लिए निकालता हूं तो उस 1 घंटे का जो रिजल्ट है, लाइक आई एम वेरी हैप्पी, और मैं आज अपने घर से बहुत एक, जस्ट वी कंसिडर टू थिंग्स, मैं आज अपने घर से एक बहुत हैप्पी स्टेट में निकला हूं और मैं अपने वर्क प्लेस पर पहुंचा हूं, तो वहां मेरी रिलेशनशिप सबके साथ कैसी है? उसके बाद जब मैं देखता हूं कि वो जो वर्क, वो एक हेल्थी और हैप्पी स्टेट में जो वर्क करने वाला था, जो काम मुझे 2 घंटे में करना था, वो काम मेरा ऑलरेडी 1.5 घंटे में हो जाता है, तो मैं वो जो 1 घंटा मैंने मॉर्निंग में इन्वेस्ट किया था, एक्चुअली उसका कई गुना टाइम में अपने लिए उसका आउटपुट मुझे मिलता है। तो वी शुड नेवर से कि टाइम नहीं है, दिस वर्ड शुड बी डिलीटेड फ्रॉम अवर डिक्शनरी नाउ, वी हैव लॉट ऑफ टाइम एंड बाई इन्वेस्टिंग इन टू दिस टाइम वी कैन गेट मोर, मच मोर टाइम। स्पिरिचुअलिटी के डिटेल में हम लोग, आप लोग डिफरेंट सेशंस हैं उसमें जाएंगे, बट मैंने जो अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी को लाकर, मतलब व्हाट क्या स्पिरिचुअलिटी के जो मंत्र जिन्हें कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया है, उनमें से मैंने 3 मंत्र को बहुत अच्छी तरह अपनाया है। एक है एक्सेप्टेबिलिटी, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, मैं हर किसी को एक्सेप्ट करना सीखता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि मेरी कैपेसिटी और सामने वाले की कैपेसिटी अलग है, मैं डिफरेंट हूँ, सामने वाला डिफरेंट है, वी कैन नॉट बी लाइक हम एक दूसरे जैसे कभी हो ही नहीं सकते। तो जब हम ये भाव अपने अंदर लाते हैं तो बहुत आराम से लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। दूसरा जो जो मंत्र मैंने अपनी जिंदगी में लिया वो है अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई फिक्स अप माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी हो रहा है या जो भी होने वाला है उसके लिए मैं खुद को अपने लिए जिम्मेवार मानता हूँ और मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता हूँ। और जब ये दोनों चीज आ जाती हैं तो जो तीसरा मंत्र है वो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड लाइफ, समाधान स्वरूप जीवन, समस्या स्वरूप जीवन नहीं बनना। समस्याएं तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत आ रही है, हमारे को समाधान स्वरूप हमारे जीवन में समाधान लाना है। तो इन तीन मंत्रों के साथ अपनी लाइफ को बहुत कुछ चेंज किया है। मैं आप सबसे भी उम्मीद करता हूँ कि हम भी अपने लिए टाइम निकालेंगे और अपनी इस लाइफ को एक ब्यूटीफुल और हैप्पी लाइफ बनाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्तमान समय की जो आवश्यकता है, श्रीमद् भगवद गीता इन मॉडर्न टाइम्स। श्रीमद् भगवद गीता एक यूनिक यूनिवर्सल स्क्रिप्चर है जो हर ह्यूमन बीइंग के पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही इसमें वर्णित गीता ज्ञान नेशनल इंटरनेशनल सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो हीलिंग को लेकर, कि किस तरह से गीता ज्ञान हमारे हेल्थ को ठीक रखती है, संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाती है। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक डायमेंशन को कवर नहीं करती, श्रीमद् भगवद गीता इस बात पर आधारित है कि जो भी प्रॉब्लम है या परफेक्ट हेल्थ है, जब तक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को नहीं देखा जाता तब तक वो सॉल्यूशन भी नहीं मिलता और परफेक्ट हेल्थ भी नहीं मिलती। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता थ्री डायमेंशन हेल्थ केयर की बात करती है। मेडिकल साइंस वैसे फिजिकल एस्पेक्ट को ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन भगवद गीता कहती है कि जब तक आप फिजिकल इमोशनल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कवर नहीं करोगे तब तक हेल्दी लिविंग नहीं हो सकती है। भगवद गीता यह भी कहती है वन गॉड वन फैमिली, एक ईश्वर परमात्मा की बात करती है, क्योंकि गॉड जिसको सभी सुप्रीम पावर मानते हैं, सुप्रीम एनर्जी मानते हैं। तो जब तक हर आत्मा का ह्यूमन बीइंग का उससे कनेक्शन नहीं है तब तक भी वो हैप्पी और हेल्दी नहीं रह सकती। वैसे भी आजकल जो भी बीमारियां हैं इस समय वो साइकोसोमेटिक ही ज्यादा हैं। तो इसलिए इमोशनल एस्पेक्ट पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो वर्तमान समय की आवश्यकता है कि हम तीनों बातों पर ध्यान दें। तो चलिए अब हम उस स्थान पर उस सिचुएशन को देखते हैं भगवद गीता जिस समय सुनाई गई। महाभारत के मध्य गीता ज्ञान सुनाया गया। दोनों तरफ युद्ध के लिए सेनाएं खड़ी हुई थीं और बीच में अर्जुन को श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे थे। तो ये ज्ञान कैसा ज्ञान था, इतना अनोखा ज्ञान था, जिस ज्ञान के आधार पर इतना परिवर्तन अर्जुन में आया और उसमें इतनी पावर आ गई, तो आज हर व्यक्ति वास्तव में अर्जुन के समान है। उस युद्ध के मैदान में अर्जुन उदास हो गया था, डिप्रेशन की अवस्था में जा रहा था और आज हर मानव का यही हाल है। अगर हम देखें तो यह सारा संसार एक युद्ध का मैदान है। सभी जगह एडवर्स कंडीशंस हैं, कोई अपनी बीमारी से परेशान है तो कोई विपरीत परिस्थितियां, रिलेशनशिप, इन सब प्रॉब्लम से परेशान है। तो संसार में युद्ध जैसी सिचुएशन है और उसके अंदर मानव मन प्रभावित हो जाता है तो उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। तो जो भी भगवद गीता में या महाभारत में जो पात्र बतलाए हैं वो वास्तव में सिंबॉलिक हैं, और पांडव जो पांच बतलाए हैं वे वास्तव में जीवन जीने के प्रिंसिपल्स हैं। अगर हम इन प्रिंसिपल को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी सिचुएशन का सॉल्यूशन हमें अपने आप मिलता है और अपने आप ही हम परफेक्ट हेल्थ की ओर अग्रसित होते हैं। तो चलिए हम इन पात्रों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अर्जुन, अर्जुन अर्थात ज्ञान अर्जन करने वाला। तो आज आवश्यकता है उस ज्ञान की, जिसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। इस स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार पर स्पिरिचुअल क्वेश्चन पड़ता है। आईक्यू के लिए हम इस दुनिया के नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज पढ़ते हैं, वह भी बहुत आवश्यक है, लेकिन जैसे जैसे ये मटेरियलिस्टिक नॉलेज बढ़ता गया, स्पिरिचुअल नॉलेज कम होता गया और व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती गई। जब एसक्यू अच्छा होता है तो अपने इमोशंस पे भी व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है, अर्थात उसका ईक्यू भी अच्छा होता है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज वास्तव में गीता क्या सिखाती है? आत्मज्ञान। तो अर्जुन आत्मा का ही नाम है। गीता आत्मा और परमात्मा के बीच में संवाद है। तो जब इस नॉलेज को हम ग्रहण करते हैं, अर्थात हम ही अर्जुन हैं, तब हमारी विल पावर बढ़ जाती है, जो बहुत आवश्यक है किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए और किसी भी बीमारी को भी ठीक करने के लिए। लास्ट ईयर स्टडी हुई है जिसमें जर्नल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, उसमें डायबिटीज के ऊपर दिया गया है कि जब व्यक्ति को डायबिटीज होता है तो उस समय भी गीता ज्ञान अगर वो अप्लाई करता है तो उसको बहुत फायदा होता है, क्योंकि ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं। तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए डाइट, एक्सरसाइज और इंसुलिन या ओरल एंटी डायबिटिक लेना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति तभी यह कर सकता है जब उसका विल पावर हाई है और एक्सेप्टेंस है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि लोगों को संयम नहीं है तो वह ना चाहते हुए भी अपने डाइट पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक जीवन जीने की कला जो भगवद गीता सिखलाती है और इस स्पिरिचुअल नॉलेज से हमको मिलता है। तीसरा, डिसिप्लिन लाइफ, जिसको कि नकुल कहा गया। विल पावर अर्थात भीम और नकुल अर्थात डिसिप्लिन लाइफ। अगर हम बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार चलते हैं, डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, तो हम हेल्दी रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। तो हम इसके भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से डिसिप्लिन लाइफ के लिए भगवद गीता ने कहा है। चौथी बात जो चौथा भाई के रूप में बतलाया है वो है सहदेव। सहदेव अर्थात मैं अर्जुन आत्मा, मेरा सबसे बड़ा जो फ्रेंड है वो मेरे सेंस ऑर्गन्स हैं। तो अगर मैं अपने सेंसेस पर कंट्रोल करती हूँ, अर्थात कि मैं क्या देखती हूँ, मैं क्या सुनती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, ये इमोशनल डाइट जो मैं इनके थ्रू लेती हूँ, उसका असर भी मुझ आत्मा पर पड़ता है। अर्थात मुझे इन सेंस ऑर्गन्स पर भी कंट्रोल बहुत आवश्यक है, जो भगवत गीता का एक मुख्य लेसन है। और पांचवें ब्रदर के रूप में बतलाया है युधिष्ठिर। इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में विपरीत परिस्थितियों में जो अपने मन को स्थिर रख सकता है वही युधिष्ठिर है, अर्थात रिलैक्स्ड माइंड। रिलैक्स्ड माइंड जिसके पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो वो स्वस्थ भी रह सकता है और उसका डिसीजन भी सही रह सकता है, बाहर की सिचुएशन को भी कंट्रोल कर सकता है। तो बाहर के सिचुएशन को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है अपने मन को स्थिर रखने की। तो ये पांच प्रिंसिपल जो गीता हमें सिखाती है। अब हम यह देखें कि अर्जुन को किस तरह से भगवत गीता में भगवान ने ये ज्ञान दिया और उसको अपनी डिप्रेशन की स्टेज से बाहर किया। तो जब अर्जुन विषाद की ओर जा रहा था, क्योंकि गीता में जो 18 चैप्टर हैं, सबके नीचे योग शास्त्र लिखा है, अर्थात योग इस गीता शास्त्र का मुख्य भाग है, जिसको कि मन मनाभाव कहा गया। तो अर्जुन सरेंडर हो जाता है उस भगवान की ओर, परमात्मा की ओर, और अपनी सिचुएशन को बदलाता है। तो जब भी हमें स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो हम उसको सप्रेस ना करें। अर्जुन ने जिस तरह से अपनी फीलिंग डिस्क्राइब की वो बहुत आवश्यक है काउंसलर को बताना। तो यहां पर अर्जुन बहुत भाग्यशाली था, क्योंकि गीता में जो बेस्ट काउंसलर भगवान को बतलाया हुआ है, भगवान से कनेक्शन बतलाया हुआ है, वन गॉड वन फैमिली, अर्थात कि अर्जुन अपनी अवस्था को कहता है कि भगवान मैं तो अब बहुत परेशान हो गया हूं, मेरे अंदर बहुत पैल्पिटेशन, घबराहट हो रही है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो रही है, मेरे पैर बहुत लड़खड़ा रहे हैं और अब मैं खड़े होने योग्य नहीं हूं, मुझे बहुत वीकनेस लग रही है। तो जब बहुत एंग्जाइटी हो जाती है और व्यक्ति बहुत लो फील करता है, तो इस तरह की कंडीशन आ जाती है। तो उसने जब अपने बात को भगवान के सामने रखा, तब भगवान ने उसको गीता ज्ञान देना सेकेंड चैप्टर से प्रारंभ किया। तो हमें भी अपनी बात को रखना है ऐसी जगह, परमात्मा के पास रखें, क्योंकि यही योग है। तो भगवान ने उसमें क्या शिक्षा दिया? अर्जुन, तुम्हारे स्ट्रेस एंग्जाइटी का सबसे बड़ा कारण है कि तुम अपने आप को देह समझते हो। ये देह एक वस्त्र के समान है। बासा सिजीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात तुम आत्मा हो। ये देह रूपी वस्त्र में तुम यह अपना पात्र निभा रहे हो और बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण तुमको ये सारी एंग्जाइटी हो रही है। कहने का अर्थ, मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ इज द रूट कॉज ऑफ स्ट्रेस। तो अर्जुन, जब मैं अपने आप को इस शरीर से अलग समझती हूँ तो अपने आप ही उस स्वधर्म में टिक जाती हूँ। क्योंकि भगवान ने आगे यही कहा कि अर्जुन तू स्वधर्म में रहकर युद्ध कर, अर्थात इस संसार रूपी युद्ध क्षेत्र में तू कर्म कर, स्वधर्म में रहकर तो मेरे अंदर ही शांति है, प्रेम है, आनंद है, शक्ति है, यही तो स्वधर्म है। तो अर्जुन में ये जागृति आ जाती है और वो भगवान को पूरी तरह से सरेंडर हो जाता है। क्योंकि भगवान ने यही कहा, तू एकाग्र चित्त होकर मेरी बात सुन। तो गीता में भगवान अपना परिचय फर्स्ट पर्सन में भी देते हैं और कहते हैं कि मैं एक प्रकाश स्वरूप हूं, तू भी एक लाइट है, मैं भी एक लाइट ही हूं, लेकिन मैं ऑल माइटी हूं। ज्योतिषा मापी तज्ज्योति, अर्थात ज्योति के समान हूं, ज्योतियों का ज्योति महाज्योति हूं। तो उस एक परमात्मा को पहचानना, जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम अपनी एनर्जी को एक जगह फोकस करते हैं तभी उससे प्राप्ति होती है। तो जो हमारे अंदर स्वधर्म है उसी का वो सागर है, ओशन है। तो उससे कनेक्शन बहुत जरूरी है। तो भगवद गीता कनेक्शन की बात कहती है कि मुझसे सर्व संबंध रखो। गीता में ही ये कहा है कि मैं तुम्हारा माता पिता धाता हूं, अर्थात पालना करने वाला हूं। तो जब हम ऐसा समझते हैं तो अपने आप ही वो पावर आ जाती है और हमारी विल पावर बढ़ जाती है। साइंटिफिक स्टडीज भी हैं कि जो सुप्रीम पर विश्वास करता है उसको स्ट्रेस भी कम होता है। तो पांडव बुद्धि, अर्थात प्योर बुद्धि, जो कि इस ज्ञान को सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, तो सुनते सुनते इस ज्ञान को हम आत्मसात भी करते जाएं। अब आगे और भगवत गीता में जो मुख्य बात कही हुई है वह है कर्म योग की, कि कर्म करते हुए आप उसके फल की इच्छा मत करो। क्योंकि फल की इच्छा करने से ही उससे अटैच हो जाते हो और अटैच होने के कारण आपको स्ट्रेस होता है। योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में रहकर कर्म करो, लेकिन समत्व में योग उच्यते, अर्थात जो भी रिजल्ट मिले उसमें समत्व भाव रखो, तभी आप रिलैक्स हो सकते हो। क्योंकि हम कर्म तो सब करते हैं लेकिन कभी कभी फल हमारी सोच के अनुसार नहीं निकलता, क्योंकि पास्ट के कर्मों का भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि भगवद गीता के अनुसार आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, या एक ऊर्जा है। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, अर्थात हमने अनेक जन्म लिए हैं तो कई पास्ट की जो नेगेटिव एनर्जी है वो कभी कभी इस रूप में आती है जो प्रेजेंट हमारे हाथ में है। अर्जुन फ्यूचर को सोच में भी सोच करके भी बहुत स्ट्रेस कर रहा था, घबरा रहा था। तो आज का मनुष्य भी ऐसा ही है, या तो पास्ट में रहता है या तो फ्यूचर में रहता है। लेकिन भगवत गीता यह सिखलाती है कि कर्म आपके हाथ में है, प्रेजेंट आपके हाथ में है, तो उसको फोकस करो। अगर अभी पॉजिटिव एनर्जी है तो अवश्य ही ये आपके जो अच्छे कर्म हैं वो उस धीरे धीरे उस पास्ट के जो विकर्म हैं उनको ये न्यूट्रलाइज कर देगा और फ्यूचर अच्छा होगा ही। तो कर्म योग हमें करना बहुत आवश्यक है। फिर चौथी बात भगवद गीता जो हमें सिखलाती है कि आप किसी से जेलसी, एंगर इन सबसे दूर रहो, क्योंकि ये बातें सबसे ज्यादा मन को डिस्टर्ब करती हैं, नेगेटिव हार्मोन रिलीज होते हैं, मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं और बीमारी का भी एक बहुत बड़ा कारण यही है। बहुत सारे जो कैंसर्स हैं उनमें स्टडी की गई कि एक या दो वर्ष पहले ऐसे ही व्यक्ति डिप्रेशन में था और नेगेटिव था, या तो किसी से जालसी थी या उसको ऐसा कोई शॉक हुआ था और उसके कारण आज उसके बॉडी में इफेक्ट हुआ है। जैसे कि पहले ही हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द डिजीज आर साइकोसोमेटिक, तो इन सब से भी दूर रहना है। और इसके लिए योग जो इसका मुख्य सब्जेक्ट है, चैप्टर 6 पूरा ही इस पर डिवोटेड है। तो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल भी बहुत ज्यादा जरूरी है, 6 चैप्टर में भी ये बतलाया हुआ है। प्रेजेंट सिचुएशन में भी इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए डाइट, एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप की बात कही जाती है। भगवद गीता तो यही कहती है कि योगी ना तो बहुत खाता है और ना तो कम खाता है, ना तो बहुत सोता है ना तो कम सोता है, उसकी नींद भी प्रॉपर होती है, उसके कर्म भी जो होते हैं युक्ति युक्त होते हैं, उसका आहार विहार वो भी आदर्श होता है। अर्थात बैलेंस डाइट लेना, वेजिटेरियन डाइट की बात भी भगवद गीता करती है। तो इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब लेना चाहिए, रस युक्त फ्रूट जिनको कि सात्विक आहार कहा जाता है। और एक्सरसाइज विहार की बात करती है गीता, अर्थात वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। इन बातों को ध्यान रखने से और अर्ली मॉर्निंग, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यह बात भी भगवद गीता सिखलाती है कि बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार भी हमारा दिनचर्या होना चाहिए। क्योंकि सुबह सुबह जब जल्दी उठते हैं तो उस समय रिलैक्सिंग हार्मोन हमारे अंदर होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन अपने आप कम हो जाते हैं। रात में भी सोते समय जो आज हमारा संग है सेंस ऑर्गन से, जो हम आंखों से मोबाइल देखते हैं और विभिन्न प्रकार के लोग सीरियल्स देखते हैं, तो सोने के कम 1 घंटे पहले इन सब चीजों को बाय बाय कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे भी नींद ठीक नहीं आती। अर्थात कि हमें अपने संग को चेंज करना पड़ेगा, सुबह और शाम हम अच्छा संग रखें, इसको ही हम मेडिटेशन कहते हैं। अर्थात सुबह भी उठकर हम उस परमात्मा को याद करें और सोने के पहले भी 1 मिनट हम अपने आप को देखें। प्रेजेंट सिचुएशन में मैं अर्जुन आत्मा इस शरीर रूपी रथ में दोनों प्रकृति के मध्य मैं रथी इस देह रूपी वस्त्र में मैं अर्जुन अपना पार्ट प्ले कर रही मेरा स्वधर शांत प्रेम में साक्षी होकर इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र को देख पा रही हूं। मेरे सामने सुप्रीम गाइड के रूप में मेरे सारथी बनकर मेरे सामने है जो ज्योति के समान लाइट के समान है। उनसे दिव्य प्रकाश शांति के लहरें आ रहे हैं। मैं बिल्कुल शांत और मैं अर्जुन पॉजिटिव हेल्थ की ओर अग्रसर हो रही हूं। मेरा मन और तन बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है। ओम शांति।
ओम शांति। हम डॉक्टर शुभदा नील, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई। बहुत ही सुंदर विषय लेकर हम सभी के सामने आए हैं, वेलनेस ऑफ वुमन। वाओ, देखो नाम ही कितना अच्छा है, वाओ, वेलनेस ऑफ वुमन। तो आप सभी का इस सत्र में, वेलनेस ऑफ वुमन इस सत्र में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। एंड आई ब्रिंग ग्रीटिंग्स फ्रॉम ब्रह्मा कुमारी एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम दादी हृदय मोहिनी जी, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी। तो ये जो प्रोजेक्ट है वेलनेस ऑफ वुमेन, ये हर एक के लिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हम सभी को पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो भी हमारे डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट और बाकी सभी स्ट्रेंथ के डॉक्टर्स इस प्रोजेक्ट को सुन रहे हैं, एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, नर्सेस हो, उन सभी को ये अवेयरनेस लोगों में क्रिएट करने के लिए पब्लिक फोरम कैसे कंडक्ट किया जाए, तो ये इस सत्र से हम जानकारी लेंगे। और सभी पब्लिक को भी इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए ऐसे जरूरी नहीं कि ये प्रोग्राम सिर्फ वुमन को सुनना है, माताओं को या बहनों को सुनना है। भले हमारे भाई लोग जेंट्स भी सुन रहे हैं, तो वो इस भावना से सुने कि इस इंफॉर्मेशन को हम हमारे घर में जो भी बहने हैं, माताएं हैं, मदर, सिस्टर, डॉटर, वाइफ, कलीग है, तो उन सभी तक इस इंफॉर्मेशन को आपको लेकर जाना है। मैं तो कहूंगी जो जो प्रोग्राम ये देख रहे हैं, ये सभी हेल्थ मैसेंजर्स हैं, आप सभी आरोग्य दूत हो। और आपका काम क्या है, दूत का काम क्या होता है, संदेश लेकर जाना। तो एक 5 लोगों तक यदि ये इंफॉर्मेशन लेकर जाता है तो क्या होगा, इससे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकेंगे। और जो जो बीमारियों को आज माताओं को, बहनों को, जिन बीमारियों को सामना करना पड़ता है, तो उन सभी बीमारियों को हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसीलिए आइए जानते हैं वेलनेस ऑफ वुमन प्रोजेक्ट क्या है। जैसे आप सभी को पता है कि आजकल पूरे विश्व में और भारत में विशेष ये सभी जो बीमारियां, जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल की चेंजेस की वजह से जो बीमारियां हमें होती है, जिसमें कैंसर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, ब्रेन अटैक, स्ट्रोक है, डिप्रेशन है, ये सभी बीमारियां काफी बढ़ रही है और इसीलिए ये हमने मूवमेंट चालू किया है ब्रह्मा कुमारी और गायनेकोलॉजिस्ट ने मिलकर वेलनेस ऑफ वुमन, ये पूरे अक्रॉस इंडिया एक मूवमेंट चालू किया है ताकि हम इन सभी बीमारियों को कम कर सके। और जब हमारी घर की माताएं स्वस्थ होगी तो क्या होगा, वो घर जो हर घर स्वस्थ होगा तो वो देश स्वस्थ होगा।
आई वुड लाइक टू थैंक फॉक्सी एंड फॉक्सी प्रेसिडेंट 2019 Dr. Nandita Palshetkar for starting this unique project, Wellness of Women, in association with FOXI and Brahma Kumari.
और इसीलिए इस मूवमेंट को आपके द्वारा दोस्तों हम काफी लोगों तक इसे पहुंचाना चाहते हैं। तो हम थोड़ा सा कैंसर के बारे में जानते हैं। माताओं में विशेष तीन कैंसर मोस्ट कॉमन है, एक है ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा है सर्वाइकल कैंसर जिसको गर्भाशय मुख का कैंसर हम कहते हैं और तीसरा है ओवरल कैंसर। अभी आप देखेंगे कि रिसेंट डेटा क्या कहता है, ब्रेस्ट कैंसर कितना है, हर साल ऑलमोस्ट 1,60,000 नए केसेस हमें ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्ट होते हैं और ऑलमोस्ट माना 80,000 लोगों की मृत्यु होती है, औरतों की मृत्यु होती है, मतलब 50% डेथ। यदि दो औरतों को हमने ब्रेस्ट कैंसर से डिटेक्ट किया तो उसमें से एक की मृत्यु होती है, क्यों, क्योंकि लास्ट स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है। सर्वाइकल कैंसर से हर साल 1,00,000 नए औरतों को ये कैंसर होता है और उसमें से 60,000 औरतों की मृत्यु होती है, मतलब ऑलमोस्ट 60% डेथ होती है। और ओरल कैंसर जो हमारे टोबैको प्रोडक्ट के वजह से होता है, ऑलमोस्ट 28,000 नए केसेस हर साल और उसमें भी 16,000 लोगों औरतों की मृत्यु होती है। अभी सर्वाइकल कैंसर ये एकमात्र कैंसर है जिसको हम ऑलमोस्ट 95% प्रिवेंट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके लिए कुछ टेस्ट है डिटेक्ट करने के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट, माने आपको अभी कैंसर हुआ भी नहीं है और ऐसे टेस्ट से हमें आगे चलकर 8-10 साल के बाद कैंसर होने वाला है तो वो आज पता चलता है, उसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। और वैक्सीन अवेलेबल है, तो यदि जैसे हम वैक्सीन पोलियो का देते हैं तो देखो भारत पोलियो मुक्त हो गया, वैसे ही यदि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन हम गर्ल्स को देते हैं 10 साल से लेकर तो ये कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये एकमात्र कैंसर है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखो इसके बावजूद जो कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं 200 औरतों की मृत्यु हर दिन हो रही है, हर घंटे में 8 महिलाओं की मृत्यु होती है, हर 7-8 मिनट में एक महिला की मृत्यु गर्भाशय मुख के कैंसर के वजह से होती है। तो इसीलिए क्या करना है, स्क्रीनिंग फॉर मदर्स, मदर्स का हम जांच करें और वैक्सीनेशन फॉर डॉटर, हम हमारे जो लड़कियां हैं डॉटर्स है गर्ल्स है उनको हम इसका वैक्सीन दें। अभी टेस्ट क्या क्या कर सकते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं, पैप स्मियर है, HPV टेस्ट है, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ आफ्टर अप्लाइंग एसिटिक एसिड। तो आप 35 इयर्स के बाद आपके नजदीक की गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और जो टेस्ट वो आपको रिकमेंड करेंगे आप ये टेस्ट जरूर करवा लेना। और जो आपके घर में जो गर्ल्स है डॉटर्स है 10 इयर्स के बाद इनको वैक्सीन देना है तो इसके लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास पीडियाट्रिशियन के पास जाकर इसका आप टीका लगवा सकते हैं। 10 से 15 साल तक सिर्फ 2 टीके लगवाने होते हैं, एक टीका लगाने के बाद 6 महीने के बाद दूसरा, जैसे हम बाकी सभी टीके हमारे बच्चों को लगाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जानकारी कि स्क्रीनिंग फॉर मदर्स एंड वैक्सीनेशन फॉर डॉटर्स टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, ये आपको काफी लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है ताकि हम सर्वाइकल कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम जानेंगे, ब्रेस्ट कैंसर हम पूरा प्रिवेंट नहीं कर सकते लेकिन ब्रेस्ट कैंसर को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी देखा हर साल 1,60,000 नए पेशेंट, उसमें 80,000 औरतों की मृत्यु हो रही है, क्यों, क्योंकि लास्ट स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है। और इसीलिए हमें क्या करना है, ये कैंसर हम कैसे कम कर सकते हैं, तो हम हर महीने में हम हमारे जो माताएं हैं बहनें हैं उनको हम एक्सप्लेन करें, उनको हम ट्रेनिंग दें कि कैसे वो सेल्फ रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो हर लेडीज को 25 इयर्स के बाद महीने में एक बार अपना स्वयं का स्वयं स्तन परीक्षण करना जरूरी है। साल में एक बार आप अपने डॉक्टर्स के द्वारा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवा लीजिए और फिर 40 इयर्स के बाद जैसे आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे आप मामोग्राफी जो टेस्ट होता है जिसमें एक्सरे होता है और सोनोग्राफी होता है ये यदि हम करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है कि यदि हमने इन प्रिवेंटिव मेजर्स को अपना लिया तो जो औरतों की मृत्यु हो रही है ये हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं। वैसे ओरल कैंसर तो टोबैको प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है लेकिन लोगों में आज अवेयरनेस नहीं है तो लोगों को ये इसके लिए अवेयरनेस करना बहुत बहुत जरूरी है। माना इन शॉर्ट क्या कि फाइट कैंसर आई कैन, हम लोग कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैंसर को हम कम कर सकते हैं ताकि जब हम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएंगे तभी। और वैसे ही साथ साथ देखो कैंसर के साथ बाकी सब बीमारियां भी है, हमारा डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, ब्रेन अटैक जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, ब्लड प्रेशर है, हमारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से थायराइड प्रॉब्लम हो रहा है, डिप्रेशन है, ये सभी बीमारियां काफी बढ़ रही है। अभी ये सभी बीमारियां क्यों बढ़ रही है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही हमने ये जाना तो क्या होगा, हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ये जान सकते हैं। तो दोस्तों विशेष ये बीमारियां हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो गई है। आजकल हमारी जो डाइट है ना, काफी हद तक हम जंक फूड खाते हैं, हमारा रूटीन जो है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो गई है और ये दोनों की वजह से हमारा वेट पुट ऑन होता है। तो ये ओबेसिटी मोस्ट कॉमन उसका कॉज है। फिर हमारे फैमिली हिस्ट्री, हमारे घर में है ना कैंसर का, यदि किसी को कैंसर की शिकायत है, बीमारी है, तो वो जीन्स की वजह से हमें होने की संभावना होती है। फिर हमारे एडिक्शंस है जैसे हमने टोबैको के बारे में देखा, और फिर स्ट्रेस, ये सभी वजह है हमें बीमारियां होने की, जो भी है, कैंसर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है। तो क्या करना होगा, इन सभी फैक्टर्स को हमें कम करना होगा। जो मैंने पहले कहा कि ओबेसिटी मोटापा ये एक वजह है सभी बीमारियों की, कैंसर से लेकर आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक सभी के लिए। तो मोटापा को कम करने के लिए हमें दो चीजें करनी होगी, डाइट को भी कंट्रोल करना होगा हमें और हमें एक्सरसाइज भी करना होगा। और क्या होता है मोटापा, विशेष जो पेट जो हमारा बड़ा हो जाता है तो पेट का मोटापा की वजह से आपको डायबिटीज भी हो सकती है, संभावना होती है, आपका चर्बी जिसको कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता है जिसको हम हाइपर लिपिडीमिया कहते हैं, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और इन सभी की वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होने की संभावना ज्यादा होती है। और इसीलिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हर साल 35 इयर्स के बाद आप अपना चेकिंग जरूर कराइए कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, आपका शुगर नॉर्मल है, कैंसर के जो टेस्ट आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे यदि आप वो करेंगे तो आप ये जानेंगे कि आप हेल्दी है, नॉर्मल है या आपको कुछ बीमारियां होने की आगे जाकर संभावना है, ताकि हम उस अनुसार फिर मेजर्स ले सकते हैं। तो ये हो गया पहले आपका मॉनिटरिंग चेकअप। दूसरा आप क्या करेंगे प्रियो, आप जो डाइट के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, तीसरा हम फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे, फिर चौथा हम जो भी एडिक्शन थे तो डी एडिक्शन करना होगा, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमारे मन को हमें शांत रखना है, खुश रखना है, तनाव मुक्त रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, एंगर फ्री हमारा जीवन हो, क्रोध मुक्त तनाव मुक्त जीवन, और उसके लिए हम थोड़ा सा राजयोग मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। तो ये तीन टूल्स है ना, तीन टूल्स में डाइट के बारे में हम जानेंगे। तो डाइट, जैसे डाइट में क्या क्या खाना है आपको, तो जो नेचर ने हमें दिया है ना, हमारा स्प्राउट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, ये हमारे खाने में ज्यादा मात्रा में आना चाहिए। फिर हमारे खाने में क्या कम करना है, सिंपल एक लाइन आप याद रखना, 3 चम्मच कम 2 कदम आगे, है ना, 2 कदम आगे माना आपको एक्सरसाइज करना है और 3 चम्मच कम करना है। तो एक शुगर, एक सॉल्ट, घी ऑयल का कम करना है, और साथ में आप जो टी है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब आपके खाने में कम आना चाहिए। फास्ट फूड, जंक फूड आपको बिल्कुल ना के बराबर लेना है, और नॉनवेज तो बिल्कुल मना है क्योंकि उसका इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर भी हो रहा है और साथ साथ मन के ऊपर भी हो रहा है। यदि मैं आपको मेरा खुद का जो प्रैक्टिकल मैं फॉलो करती हूँ वो बताऊं तो मैं 2 टाइम फूड लेती हूँ। आप कितने बजे भोजन कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। अभी 2 बार मैं भोजन करती हूँ, तो सुबह का भोजन 9 से 10 के बीच में करती हूँ, और उस भोजन में भी ज्यादा से ज्यादा अनकुक्ड फूड है ना, जो रॉ फूड होता है उसमें आपके ग्रीन जूस ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट्स है, स्प्राउट्स है, वेजिटेबल सलाड है। अभी देखो इतना सब खाने के बाद अभी रोटी सब्जी खाने के लिए, दाल चावल खाने के लिए कितनी जगह रहेगी। तो आपका मैक्सिमम जो है ये रॉ फूड ज्यादा होना चाहिए, वेजिटेबल्स उसमें ज्यादा होना चाहिए और फिर आप रोटी सब्जी ले सकते हो। और शाम के खाने में भी ऐसे ही, शाम का खाना आप 5 से 6 के बीच में ले लीजिए, उसमें भी जैसे मैंने ये मॉर्निंग में हम जो लेते हैं उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं। अभी सूप और स्प्राउट्स आपके फ्रूट्स ये सब लेने के बाद यदि हो सकता है कोशिश कर लीजिए कि आप ग्रेन मील अवॉइड कर लीजिए, अनाज वाला मतलब रोटी और चावल वाला भोजन आप दिन में एक बार लेंगे तो और उसका बेनिफिट होता है। अभी देखो आपने शाम का भोजन 6 बजे कर लिया और सुबह आप 10 बजे कर रहे हैं, तो दोस्तों कितना समय हमारा फास्टिंग हो जाता है, नेचुरली फास्टिंग 16 आवर्स हो जाता है। तो हमारे बॉडी को डाइजेशन के साथ साथ क्लीनिंग के लिए, हीलिंग के लिए टाइम मिलता है, तो हमारी बॉडी अंदर से क्लीन हो जाती है। और ये रिसर्च कैसे है, देखो इस रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिला 2016 में, जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला फॉर डूइंग वर्क ऑन फास्टिंग। तो यदि, और मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप एक ही बार भोजन करिए, आप 2 बार भोजन कर सकते हैं, सिर्फ आप टाइमिंग आपका चेंज कर लीजिए तो ऑटोमेटिकली जो 16 आवर्स फास्टिंग होगा उससे क्या होगा, आपकी बॉडी अंदर से क्लीन हो जाएगी। एंड हाईली क्लीन बॉडी इज हाईली इम्यून बॉडी, जितनी बॉडी अंदर से हमारी स्वच्छ होगी उतनी वो बॉडी हमारी तंदुरुस्त होगी, इम्यून होगी, तो हमें बीमारियां नहीं होगी। तो ये सिंपल मेजर्स है, लेकिन आप ये खुद भी फॉलो करना और ये आप दूसरों को भी बताना। अभी ग्रीन जूस के बारे में मैं जस्ट 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगी, आप इसे फॉलो कर लीजिए, दोनों बार आप ग्रीन जूस ले सकते, सिंपल है। देखो क्या क्या लेना है, एक तो आपको जो स्पिनच है ना, जो पालक है, और आप लौकी है ना जो बॉटल गॉर्ड है ये लेना। फिर दूसरा आपको क्या करना है, फ्रूट लेना है। फ्रूट में आप 3 में से कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं छोटा वाला, अमरूद ले सकते हैं या बनाना ले सकते हैं, ये हो गया हमारा दूसरा फ्रूट। तीसरा आपको कुछ पत्ते लेने हैं, क्या पत्ते लेंगे आप उसमें करी लीव लेना, मिंट लीव लेना, तुलसी के पत्ते लेना, ये आपको सिर्फ 7-8 पत्ते लेने हैं। पुदीना के पत्ते आप ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं और खाने का पत्ता। अभी इसको आपको मिक्सर में मिक्स कर लेना है, 5 मिनट का ही काम है, और उसके साथ फिर आप इसमें दालचीनी, आप उसमें काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सेंधव नमक टेस्ट के लिए डालना, और 1 नींबू निचोड़ लेना। तो क्या होगा, आपका ग्रीन जूस 5 मिनट में रेडी हो गया। और जितना आप रॉ फूड लेंगे आपका बॉडी अंदर से क्लीनिंग होना चालू होता है। आप देख लीजिए इसको, आप ट्राई करके देखना, नेक्स्ट 3 वीक्स में ही आपको इसका असर देखना चालू हो जाएगा। तो ये ऐसे हमने पूरा डाइट चार्ट भी बनाया हुआ है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, नारी फिट इंडिया फिट अलविदा डायबिटीज, काफी सारे हम ये ऐसे प्रोजेक्ट रन करते हैं। तो डाइट के साथ साथ आपको क्या करना है, एक्सरसाइज भी करना है, क्योंकि हमें हमारा वेट कंट्रोल में रखना है, और विशेष करके हमारा जो पेट है ना उसको, पेट की जो चर्बी है, पेट का फैट कम करना है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी, और विशेष आप देखिए आजकल लॉकडाउन जैसे कंडीशन है, हम बाहर जा भी नहीं सकते हैं, तो जीन्स तो आउट ही है, लेकिन और ये कितना समय आगे चलने वाला है ये भी पता नहीं, लेकिन मैं हर रोज रोज सुबह उठते ही एक्सरसाइज करती हूँ, है ना। तो उसमें म्यूजिकल एक्सरसाइज हम रिकमेंड करते हैं। म्यूजिकल एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपका शरीर का भी एक्सरसाइज हो रहा है, और अच्छा डिवाइन म्यूजिक आप सुन रहे हो तो आपका मन का भी एक्सरसाइज हो रहा है, आपका मन भी बहुत खुश है। जब मन खुश होगा तो खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आप जब भी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिजिकल लेवल पे आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, आपका लंग ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है, और विशेष आपका कार्डियोपल्मोनरी मतलब आपका हार्ट एंड लंग परफेक्ट होना चाहिए। और ये म्यूजिकल एक्सरसाइज से आपका जो स्ट्रेचिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, आसन है, प्राणायाम है, ये सभी का कंबाइंड इसमें इफेक्ट आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे डॉक्टर उज्ज्वल कापड़नील, डॉक्टर शुभदा नील ये टाइप करके म्यूजिकल एक्सरसाइज टाइप कर सकते हैं। तो जब भी आप शुरू कर रहे हैं तो शुरू में आप 20 मिनट, फिर धीरे धीरे आप 30 मिनट का, फिर 40 मिनट का आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जरूर एक्सरसाइज आप सभी को करना बहुत बहुत जरूरी है, जो आपके शरीर और मन को स्वस्थ रखेगा। फिर आपको योगा, आसन, प्राणायाम भी करना है। देखो प्राणायाम करना बहुत आजकल जरूरी है, क्योंकि हमें हमारे लंग्स को बहुत स्ट्रांग अच्छा रखना है। तो प्राणायाम आप उसमें कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ओंकार प्राणायाम कर सकते हैं, आप भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। तो जैसे हम योग के बारे में कहते हैं तो काफी लोगों को क्या लगता है, आसन और प्राणायाम बना ही योग, तो उनको लगता है कि हम आसन प्राणायाम नहीं कर रहे बना योग नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, योग शब्द का अर्थ है मिलन, संबंध और जोड़। और हम सभी के कहा कितने योग होते हैं, चार योग होते हैं। हम सभी का पहला योग हमारे मन के साथ होता है, मन खुश, खुशी के हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो दूसरा योग संबंध कनेक्शन शरीर के साथ, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तीसरा संबंध हमारे सभी जो लोग हैं घरवा घर में है, ऑफिस में है, तो हमारे रिश्ते बहुत प्यारे हो जाते हैं। और चौथा कनेक्शन जो हम सोचते हैं वो वातावरण में फैलता है, तो हमारे घर का वातावरण शांति खुशी प्यार का होता है। तो दोस्तों ये चारों ही योग हमारे यदि अच्छे होने चाहिए, माना मैं हैप्पी रहूं, मैं हेल्दी रहूं, संबंधों में हार्मनी हो, हेवन ऑन अर्थ हो, तो क्या करना होगा, जो फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट योग है राजयोग मेडिटेशन, माना परमात्मा के साथ हमारा संबंध। क्यों परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना है, क्योंकि परमात्मा शांति का सागर है, खुशी का सागर है, प्यार का सागर है। तो जैसे ही हम उसको याद करते हैं तो ऑटोमेटिक हम सभी शांति खुशी प्यार से रहना चालू करते हैं। तो आप जरूर राजयोग मेडिटेशन के बारे में भी जानकारी लेना। क्यों ये जरूरी है, क्योंकि जो भी आज हम ये सभी बीमारियों के बारे में देख रहे हैं, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट अटैक हो, डिप्रेशन हो, कैंसर हो, ये सभी बीमारियां क्यों हो रही है, सभी आज साइंस से ये प्रूव किया है, ये साइकोसोमेटिक डिसीजेस है, माना हमारे मन की ये बीमारी है। जब हमारा मन निगेटिव है, छोटी छोटी बातों में हम नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं, हम मूड ऑफ होता है, हमें रोना आता है, किसी की बातें हमें बुरी लगती है, हम बातों को पकड़ के रखते हैं, तो इस वजह से निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो दोस्तों क्या करना होगा, सिंपल सॉल्यूशन है, हमें निगेटिव हार्मोन्स को पॉजिटिव हार्मोन्स में कन्वर्ट करना है। माना क्या, इन शॉर्ट निगेटिव जो हम सोच रहे हैं, नकारात्मक सोच को हमें सकारात्मक सोच में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे राजयोग मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जैसे ही आप राजयोग मेडिटेशन करना चालू करते हैं आप ऑटोमेटिकली शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन उस शांति के सागर के साथ, उस प्यार के सागर के साथ जुड़ जाता है। और इसमें काफी सारा रिसर्च हुआ है, ये सभी इमोशन जो है, प्यार हो, शांति हो, कॉन्फिडेंस हो, शक्ति हो, ये सब क्यों जरूरी है, आप देखेंगे कि रिसर्च हुआ। डॉक्टर बर्नी सिगल, इन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने देखा कि मिलने से क्यों हो रहे हैं, और उन्होंने एक बुक लिखा, आप देख सकते हो उस बुक को, लव मेडिसिन एंड मिराकल। उन्होंने सिंपल इसमें बताया इल का मीनिंग क्या है, IL इल, क्यों इलनेसेस हो रहे, आई लैक लव, जब मेरे जीवन में प्यार की कमी है तो फिर बीमारियां होती है। और जैसे ही उन्होंने सभी उन लोगों को कि प्यार से स्वयं को कैसे भरपूर करना है ये सिखाया और उनके जीवन में प्यार आ गया, है ना, जैसे कि आई लव यू माई हार्ट, आई लव यू माई लंग, आई लव यू माई इंटेस्टाइन, आई लव यू, हम खुद को बोलते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई एम ओके। जब हम ये खुद को समझाते हैं तो हम बीमारियों से एक तो बच जाएंगे, या बीमारी है तो भी हम बीमारियों से ठीक हो जाएंगे। वैसे ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। 1957 में जब भी कैंसर के इतने ड्रग्स अवेलेबल नहीं थे, तभी एक व्यक्ति को, मिस्टर राइट को ट्यूमर हो गया, काफी सारे गांठें, और उसका लास्ट स्टेज में डिटेक्ट हो गया। डॉक्टर ने कहा सिर्फ एक महीने की अभी आपको जीवन बचा है, तो लेकिन इसको इतना था कि मुझे जीना है। और इसको पता चला कि कुछ इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, ड्रग इसके ऊपर दिए जा रहे हैं, वो डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये ड्रग दिए जाए। हालांकि जिसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है ये ड्रग नहीं दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी रिक्वेस्ट को देखते हुए डॉक्टर ने उसको ड्रग दिया। और आप वंडर खाएंगे, विद इन उसका एक हफ्ते के अंदर सब वो ट्यूमर जो गांठें चली गई, और ये क्या ऐसे अच्छे से जा रहा था। 4-5 महीने के बाद मिस्टर राइट ने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो रिसर्च ड्रग का हो रहा था वो इतना इसका असर नहीं हो रहा है, और आप सोचेंगे देखेंगे कि इसके गांठें वापस आ गई। कि डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर को बोलता है कि देखो डॉक्टर यह ड्रग असर नहीं करता है और मेरे बीमारी वापस आ गई, और डॉक्टर को पता चला कि इसने पढ़ा है इसीलिए इसको ये प्रॉब्लम हो गया है, तो डॉक्टर ने बताया हाँ मिस्टर राइट जो पहले हम ड्रग दे रहे थे वो इतना प्योर नहीं था लेकिन अभी की जो बैच आई है वो प्योर ड्रग है, आप बिल्कुल इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और उसको मेडिसिन दिया जाता है और आप क्या देखेंगे एक हफ्ते के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और फिर 6 महीने के बाद वापस न्यूज़पेपर में आता है कि ये ड्रग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, और ऐसे जैसे ये न्यूज़ देखता पड़ता है उसकी बीमारी वापस आ जाती है, और इस बार जो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये क्यों, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस चला गया। तो कॉन्फिडेंस, तो हमें खुद को स्वयं को कॉन्फिडेंस से भरपूर करना है, हमें प्यार से स्वयं को भरपूर करना है। वैसे ही देखो फियर के बारे में है ना, जो डर है, एक बार की एक कथा, जैसे एक ऋषि मुनि जी थे और वो देखते हैं उनको कुछ आहट से महसूस होती है गांव के बॉर्डर के ऊपर, तो वो पूछते हैं कौन है, तो कहती है कि वो कहते हैं कि मैं महामारी हूँ, और पूछते हैं कि गांव में क्यों जा रही हो, तो बोलती है कि नहीं महामारी गांव में फैलने वाली है, तो ऋषि जी पूछते हैं कि कितने लोगों को लेकर जाओगे, तो कहती है कि 1000, और आप देखेंगे 3 महीने के अंदर ही 3000 लोगों की मृत्यु होती है, और जैसे ही महामारी जाने लगती है तो मुनि ऋषि मुनि उसको पूछते हैं कि आपने तो कहा था 1000 लोगों को ही आप लेकर जाने वाली हो लेकिन 3000 लोगों की मृत्यु हो गई, तो वो कहती है कि नहीं ऋषि जी मैंने 1000 लोगों की मेरे वजह से मृत्यु हुई, 2000 लोगों की मृत्यु डर की वजह से हुई। तो दोस्तों हमें शक्ति से भी भरपूर होना होगा, और यहाँ पे ही रोल आता है कि हम मेडिटेशन करें। ये मेडिटेशन से क्या होगा कि हम स्वयं को भरपूर कर सकते हैं, और इसीलिए मेडिटेशन करने के लिए मैं आप सभी को बताऊं कि जो गॉड, ये जो शब्द है ना, ये शब्द ये वर्ड ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके जो 3 अल्फाबेट है GOD, मना सुबह उठते ही आप क्या करो, पॉजिटिविटी को जनरेट करो, आप खुद को खुशी से, उमंग उत्साह से, प्यार से, शक्ति से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर करो, क्योंकि गॉड जो है ना वो पॉजिटिविटी का सागर है, और फिर इसी एनर्जी के साथ पूरे दिन में ओ मना ऑपरेट करो, और लास्ट जो वर्ड है वो है डी, मना क्या, जो भी कुछ निगेटिव पूरे दिन में हुआ है तो उसको हमें पकड़ के नहीं रखना है, उसको क्या करना है, हमें डिलीट कर देना है। तो ये 3 शब्द दोस्तों आप याद रखेंगे ना, GOD, सुबह 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 हमें क्या करना है, जनरेट करना है, और राजयोग मेडिटेशन में हम यही सिखाते हैं सुबह उठते ही आप क्या करो, सबसे पहले गुड मॉर्निंग गॉड या गॉडली मॉर्निंग आप उसको कह सकते हैं, और खुशी के, प्यार के, उमंग उत्साह के, कॉन्फिडेंस के आपको संकल्प क्रिएट करने। तो क्या वो संकल्प है, मैंने आप सभी ये संकल्प देख सकते हैं, 5 संकल्प आपको करने हैं। क्या संकल्प है, आप इसको एक एक्सरसाइज के जैसे भी कर सकते हैं, एक उंगली लेना, वाह 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 मेरी जिंदगी वाह, थैंक यू जिंदगी, आई लव यू, 2 उंगली लेना, वाह 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 मेरा परिवार वाह, थैंक यू आई लव यू, तीसरा 3 उंगली लेना, वाह 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 मेरी हेल्थ वाह, थैंक यू आई लव यू, 4 उंगली लेना, वाह 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 प्रकृति वाह, थैंक यू आई लव यू, प्रकृति को हमें थैंक देना है, सब कुछ प्रकृति दे रही है, खाने के लिए, रहने के लिए, पीना, पानी पीने के लिए, कपड़ा, सब कुछ हमें प्रकृति दे रही है, प्रकृति माँ का हम थैंक करें, प्रकृति माँ को हम प्यार करें, और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण वाह 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 ईश्वर वाह। और देखो जब ईश्वर हमारे साथ होगा, प्यार करो ईश्वर से, है ना, गॉड फियरिंग नहीं बनना है, गॉड लविंग बनना है, थैंक यू आई लव यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो कुछ हमें ईश्वर ने दिया है उसके लिए हमें उसे शुक्रिया करना चाहिए, शुक्राना का जीवन होना चाहिए, हम शिकायत करना बंद करें, हमेशा शुक्रिया का जीवन होना चाहिए। देखो जब परमात्मा, ईश्वर परमात्मा हमारे साथ होगा तो क्या होगा, हम शक्तिशाली बन जाएंगे, तो क्या कहेंगे, मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि भाग्य विधाता स्वयं मेरे साथ है, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि खुशी का सागर मेरे साथ है, मैं बहुत बहुत सुखी हूँ क्योंकि सुख का सागर मेरे साथ है। मैं बहुत बहुत धनवान हूँ। देखो जिसके पास शांति है, खुशी है, प्यार है, उसको क्या चाहिए? ऑटोमेटिकली वो धनवान बन जाता है। और लास्ट संकल्प आप क्या करेंगे? आज से मेरे साथ और मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। और ऐसे ये थॉट क्रिएट करने से क्या होगा? हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होना चालू होगा। दोस्तों ये सिर्फ शब्द नहीं है, शुरू में हमें क्या करना होगा? इसे सिर्फ बोलना होगा। लेकिन बोलते बोलते क्या होगा? हमें उसे फीलिंग में आना हम चालू करेंगे। जैसे ही हमने ये थॉट क्रिएट किए, संकल्प किए, देखो संकल्पों में बहुत ताकत होती है, शक्ति होती है। संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से हमारी स्थिति बनती है। और जैसे आपकी स्थिति होगी तो परिस्थिति भी बदल जाएगी। संकल्प से आपके संस्कार चेंज होंगे, आपके संस्कारों में वो खुशी आएगी, प्यार आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, शक्ति आएगी। तो संस्कार परिवर्तन होंगे और संस्कार जैसे होंगे वैसे संसार बनेगा। तो संकल्पों से हमारे संसार और संकल्प से हमारी सृष्टि बनती है। तो ये बहुत इजी है, आप ये जरूर करना चालू करिए। रोज सुबह भी करना है, रोज रात को सोते समय और पूरे दिन में जब भी आपको समय मिलेगा। इसको सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन इन संकल्पों से आपका जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा। और इसके साथ साथ 5 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन में हम क्या संकल्प क्रिएट करेंगे? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं खुशी, प्यार, मंगल, उत्साह, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर आत्मा हूँ। मेरा शरीर और मन स्वस्थ है, परमात्मा की शक्तियाँ मुझमें प्रवाहित हो रही है और मेरे चारों तरफ परमात्मा शक्तियों का सुरक्षा कवच है। परमात्मा शक्तियाँ मेरे परिवार के सभी सदस्यों में प्रवाहित हो रही है और सभी के चारों तरफ सुरक्षा कवच है। और ये परमात्मा शक्तियाँ मेरे जो सेवा साथी है उनमें भी प्रवाहित हो रही है और उनके भी चारों तरफ सुरक्षा कवच है, परमात्मा शक्तियों का सुरक्षा कवच। और दोस्तों ये परमात्मा शक्तियाँ विश्व की हरेक आत्मा में प्रवाहित हो रही है और हरेक आत्मा स्वस्थ है, सुरक्षित है। और विशेष ये शक्तियाँ पूरे ग्लोब में प्रवाहित हो रही है। तो मेरा देश सुरक्षित है, मेरी ये सृष्टि सुरक्षित है और ये विश्व सुरक्षित है। और हम सभी को इसमें सफलता निश्चित है क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग गॉड करना है। आप आपके रूटीन एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम भी कर लीजिए, म्यूजिकल एक्सरसाइज भी करना है। लेकिन सबसे पहले जो जो संकल्प, जो थॉट मैंने दिए उससे आप दिन की शुरुआत करना, जनरेट करना, पूरे दिन में उन्हीं संकल्पों के साथ आपको ऑपरेट करना है और रात को डिलीट करना है। तो ये एक मूवमेंट हमने चालू किया है, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ब्रह्मा कुमारी ने मिलकर, जो पूरे इंडिया में हम इसके प्रोजेक्ट करते हैं।
आई वुड लाइक टू थैंक फॉक्सी एंड फॉक्सी प्रेसिडेंट 2020 डॉक्टर अल्पेश गांधी फॉर स्टार्टिंग दिस यूनिक प्रोजेक्ट योगा फॉर वेलनेस ऑफ वुमेन इन एसोसिएशन विद फॉक्सी एंड ब्रह्मा कुमारी।
तो नारी फिट तो इंडिया फिट। जब हमारी माताएं स्वस्थ होगी, हमारा घर स्वस्थ होगा तो हमारा देश स्वस्थ होगा। तो क्या करना है? थोड़ा सा हमें चेंजेस लेकर आना है हमारे डाइट में, हमें म्यूजिकल एक्सरसाइज करना है, पॉजिटिव संकल्प करने हैं, राजयोग मेडिटेशन करना है। तो मैं आपको होमवर्क दूंगी। होमवर्क क्या है? सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग करना है, जो थॉट्स मैंने दिए संकल्प को आपको जनरेट करना है, पूरे दिन में आपको उसके थॉट्स के द्वारा ही ऑपरेट करना है। हर एक घंटे में 1 मिनट के लिए आपको ईश्वर परमात्मा से कनेक्ट कर फिर से आपकी बैटरी जो है वो चार्ज करनी है। और जो भी आप खाना बनाएंगे, खाना खाते समय जो जो थॉट्स दिए हैं उसको वापस आप रिपीट करेंगे और रोज रात को सोते समय जो भी कुछ पूरे दिन में हुआ होगा उसको ईश्वर परमात्मा को दे देना है और डिलीट करना है ना, जो जी ओ डी रात को डी माना डिलीट करना है। तो गुड नाइट करके सब निगेटिविटी ईश्वर परमात्मा को देना है। और दोस्तों टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से ही आप रोज रात को थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करेंगे। हो सकता है तो 10 बजे सोना है और रोज सुबह उठना हमें 4-5 बजे है, 6 to 8 आवर्स हमारी नींद होनी चाहिए। तो हम डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और स्लीप पे ध्यान देंगे तो क्या होगा? हम सभी बीमारियों से बच सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और हमारी सभी माताएं कैसी होगी, स्वस्थ बन जाएगी, वेलनेस ऑफ वुमन, सभी माताएं वाव बनेगी। तो आप सभी को, आप सभी के नियर एंड डियर वंस को एवर हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस मिले, यही एक ईश्वर परमात्मा से मैं प्रार्थना करती हूँ। और आपको याद है ना, आप सभी हेल्थ मैसेंजर्स हो, आप सभी को ये मैसेज एटलीस्ट 5 लोगों तक लेकर जाना है। तो आप सभी से ओम शांति।
ओम शांति। मेरा परम सौभाग्य है जो आज मैं आप सभी के समक्ष अपने इन 35 साल के सागर से अनुभवों को गागर में समाने का प्रयास अवश्य करूंगी। आज से 35 वर्ष पूर्व मेरे जीवन में इस राजयोगा मेडिटेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। शायद उस समय मुझे मेडिटेशन का अर्थ भी नहीं मालूम था, किसको मेडिटेशन कहा जाता है। अचानक हम लोगों का माउंट आबू जाना हुआ और वहां जाकर के जब हमने देखा कि हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वास्तव में परमपिता परमात्मा हमारा जीवन ही देवोतुल्य बना देते हैं, तो ये बात मुझे स्पष्ट हो गई कि भगवान कैसे मनुष्य को देवता बनाते हैं, नर को नारायण, नारी को श्री लक्ष्मी जैसा बनाते हैं। और सबसे बड़ी जो गुप्त हमारे अंदर शक्ति है, आत्मा। मेरे लिए तो ये ऐसे था जैसे अंधेरे घर में किसी ने चिराग जला दिया, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं। We say that I am a human being, wherein in our medical college, हमें खाली जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है। तो सबसे सुंदर जो मुझे बात क्लिक की वो थी कि being क्या है, आत्मा क्या है, जीव आत्मा। आत्मा का पूरा ज्ञान मिलने से मुझे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि मैं ये शरीर नहीं, लेकिन शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूं। और हर चलते फिरते इंसान के अंदर यही चैतन्य शक्ति आत्मा है। जो मुझ आत्मा को चाहिए वो ही सभी आत्माओं को चाहिए। तो इससे जो छोटा बड़ा, अमीर गरीब, जवान बूढ़ा बच्चा, नेशनैलिटी, कास्ट, क्रीड, ये सब जैसे बुद्धि से धीरे धीरे हटने लगा और हमें ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि आत्मा इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को, इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला चालक है। इस शरीर के अंदर वो एक एक्टर है, शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है। तो इस एक ही कॉस्ट्यूम से मैं भिन्न भिन्न रोल प्ले करती हूँ। प्रैक्टिकली हम देखें तो हम अपनी इस भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं हम बहुत हताश, निराश, परेशान हो जाते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, हस्बैंड के साथ, अपने पीहर घर, अपने ससुराल घर, अपने बच्चों का जीवन, सामाजिक जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, कितनी जगह आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। शायद मेरे अंदर उस समय इतनी शक्ति नहीं थी, एंटिपिकल टाइप ए पर्सनालिटी भी मैं थी, तो बहुत जल्दी थक जाती थी, इरिटेबल हो जाती थी, क्रोध आ जाता था। और कहीं ना कहीं वो क्रोध और किसी पर नहीं, अपने ही नन्हे मुन्नों पर उतरता था, जिसको लेकर मैं घंटों रो भी लेती थी। लेकिन यहां पर आने के बाद मैंने इस बात को बहुत खूबी से समझा कि हर एक, यू आर अ एक्टर, और हर एक के साथ आपको बहुत सुंदर एक किरदार निभाना है। और ये बच्चे, ये घर, ये संसार, ये तुम्हारा नहीं है। इस बात ने मुझे बहुत बेफिक्र बादशाह बना दिया ये घर मेरा नहीं, ये मेरे बाबा का घर है, भगवान का घर है। इस घर में रहने वाले हर प्राणी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, ये मेरा मेरा हटकर जैसे मेरे जीवन में बदलाव आने लगा कि ये सब कुछ भगवान का है। हम उसके बच्चे हैं, मैं भी उसका बच्चा हूं, तो जिम्मेवारी किसकी होगी। इस तरह ये जिम्मेवारी भगवान को देकर और हम निमित्त मात्र अपना कार्य करने लगे। तो यहां आने पर मुझे सबसे बड़ा जो समझ आई वो ये है कि मुझे अपने आप को मोल्ड करना है, अपने आप को सुधारना है, दूसरों की कमियां नहीं उनके गुणों को देखना है। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो भगवान की पालना, प्रतिदिन की जो ज्ञान मुरली, जो रोजाना हमारी भोजन है, खुराक है, जिसके बिना हमें एक सेकंड भी नहीं चैन आता, उस मुरली में हमें सारे दिन के लिए क्या करना है, कैसे व्यवहार में आना है, सब कुछ बाबा रोज सिखाते थे। हर दिन की आने वाली हमारे सामने क्या क्या समस्याएं आएंगी, कैसे कैसी परिस्थितियां आएंगी, कैसे कैसे लोग आएंगे और आपको उनको कैसे डील करना है। सो इट स्टार्टेड कि मुझे सेल्फ एम्पावरमेंट करना है और अपना साथी और सारथी केवल एक परमात्मा को बनाना है। मैं एक बार सड़क पर जा रही थी, शायद मैं गांव से लौट रही थी, एट दैट टाइम आई वाज इन स्कूल हेल्थ सर्विसेज, और मैं शाम का समय था, बहुत थकी हुई थी। मैंने देखा सामने से मेरे युगल गाड़ी ड्राइव करते आ रहे हैं और मैं इधर होकर देखने लगी कि शायद ये मेरी तरफ देख लें और मैं इस कार में बैठ के घर वापस चली जाऊंगी, लेकिन शायद वो कहीं जा रहे थे। तब उस समय मेरी आंखों से दो आंसू ढुलके और मैंने बड़े प्यार से कहा, बाबा तू ही मेरा साथी और सारथी है, चल ले चल मुझे घर वापस। तो ऐसी कितनी ही जीवन की छोटी छोटी बातें, बाबा हमेशा जैसे मुझे कहते थे, तुझे इतना बच्चों को पालना मुश्किल लगता था, मेरे सामने एक ये चैलेंज था कि आज के इस समाज में, इस संसार में, जहां स्कूलों में, उस समय भी बच्चों के स्कूलों में शैंपेन की बॉटल्स खुला करती थी, कॉन्वेंट स्कूल था, तो मुझे बहुत भय लगता था कि मैं अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूंगी, कैसे पालूंगी। तो जैसे बहुत मैं फिर व्रत उपवास रखने लगी और भोला भंडारी की तो मैं भगत ही थी, तो उनसे मैं कहती थी अब तो मैं थक गई हूँ, भूखी भी नहीं रह सकती हूँ, आप ही बता दो कहाँ हो, कब मिलोगे, कैसे मिलूं आपसे। और अचानक ही उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मैं कोई वहां पर मधुबन में ब्रह्मा कुमारी तो बनने नहीं गई थी, लेकिन बाबा ने कितने प्यार से मेरा मुंह अपनी तरफ घुमाया और मुझे कहा, बच्चे तेरे बच्चे कहाँ है, ये तुझे कहाँ पालना है, मैं बैठा हूं ना। बिलीव में वो दिन शायद मेरी टाइप ए पर्सनालिटी, मैं तो दुखी होती होती, लेकिन मैं मेरे बच्चों को भी बहुत तंग करती। बाबा ने इतने प्यार से उनको छुड़ा लिया, ना मुझे अब उन्हें पढ़ाने की चिंता थी, ना मुझे उन्हें कुछ और कहने की चिंता थी, क्योंकि जो मेरा थोड़ा रूट बिहेवियर था वो बहुत बदल गया। बच्चों के प्रति मेरा जो एक मोह की जगह एक शुद्ध जो प्रेम था वो बहुत गहरा हो गया, जहां मैं उनकी छोटी छोटी बातों में रोने लग जाती थी, परेशान हो जाती थी, हाथों से पसीना आने लगता था, वहां मेरे अंदर एक शक्ति पैदा होने लगी। मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ कि मोहित जब ये मेडिकल स्टूडेंट थे, फाइनल ईयर में इनका एग्जाम था, तो ये अपने सेंटअप्स देने के लिए गए और अचानक मैं अपने हॉस्पिटल में ही थी, अपने शायद राउंड के बाद अपने कमरे में आकर ऑफिस में बैठी, तो ये मेरे सामने आकर बड़ा परेशान और खड़ा हो गया। माम आपको पता है आज क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ बेटा, कैसे हुआ? कहता मम्मी आज मेरी लव एंड बेली और विद सारे नोट्स कोई चुरा कर ले गया। मैं धीरे से मुस्कुराई, मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे लिए आज शाम को ही डैडी नई किताब मंगा देंगे, आप तो ऐसे समझती हो जैसे बड़ा आसान है ये कार्य। मैंने कहा हाँ बाबा बैठे है ना, उसको शायद तुमसे ज्यादा जरूरत होगी, तो चली गई तो जाने दो, अगर आनी होगी तो आ जाएगी, लेकिन तुम तो बहुत अच्छा करोगे। और इस बच्चे ने मुझे जब एग्जाम दिया फाइनल उसका, कहा मामा आपको पता है मैंने जितनी मुझे सर्जरी पहले नहीं आती थी वो मैंने इसके बाद उसको अच्छी तरह से समझा है। और बच्चों के अंदर ये उमंग उत्साह भरने की शक्ति किसने दी? क्योंकि बाबा हमेशा हमको एक पाठ पढ़ा दिया, बच्चे निश्चय बुद्धि निश्चित विजयी निश्चिंत आत्मा भव। तू किस बात की चिंता करता है? सिर्फ तू चिंतन कर, मुझे याद कर, बाकी मैं बैठा हूं, मैं तेरा रखवाला हूं, तू सिर्फ मेरे कदम पर कदम रख। और हमारे सामने हमारे बाप दादा बड़ी दादियां इतने बड़े परिवार की पालना, कैसे ये जिंदगी आगे बढ़ने लगी मुझे पता ही चला कि मेरे जीवन में सुख शांति प्रेम आने लगा। और यहां तक कि मेरे जो संबंध थे मेरे अपनी ही इन लॉज में, मेरे अपनी सिस्टर इन लॉज के साथ, मेरे इधर घर में उधर घर में समाज में सबके साथ अच्छे होने लगे। क्योंकि एक बड़ी महिलाओं की खास बात होती है, खासकर बच्चों को लेकर, मेरा बच्चा वो ही सबसे आगे होना चाहिए, टॉप होना चाहिए। हाँ? अभी आपको क्या लगने लगा कि दुनिया का हर बच्चा जैसे मेरी अपनी संतान है? क्योंकि बाबा कई बार हमें कहते हैं बच्चे तुम जगत की माँ हो, जगदम्बा हो। मैं आपको अपना हृदय तो नहीं खोल के दिखा सकती, लेकिन मेरे अंदर यही हमेशा फीलिंग आने लगी जो मेरे बाबा ने मुझे सिखा दिया कि हर एक के अंदर एक वो नन्ना बालक देखो जो भगवान का अनन्य रतन है, तू भी उसकी एक माँ है। मुझे याद आता है जब ये मोहित मेडिकल कर रहे थे तो हर सब्जेक्ट में इसको बाबा गोल्ड मेडल दिलाते थे, तो वहां इसका एक बहुत जोड़ीदार जो नेक टू नेक कॉम्पिटिशन होता था, यह हमेशा मुझे कहता था मम्मी वो बहुत ब्रिलियंट है, मैं इतना ब्रिलियंट नहीं हूं, पर हाँ मेरे साथ बाबा की शक्ति है, वही कुछ मैजिक करते हैं। तो जब इसको वो गोल्ड मेडल मिल रहा था तो सारे मतलब जैसे दो में ग्रुप डिवाइड हो गया, आधे बच्चे ताली बजा रहे हैं आधे क्रोध में हैं। और उसकी मम्मी ने मुझे बोला कि आपका बेटा तो हर सब्जेक्ट में ले जाता है, मेरे बेटे को तो कुछ नहीं मिला। मैंने कहा दीदी आप परेशान ना होइए, ये मेरा भी बेटा है, भगवान करे इसको भी गोल्ड मेडल मिले, और भगवान की ऐसी करनी हुई कि एक सब्जेक्ट में अगला गोल्ड मेडल उस बच्चे को भी मिल गया। तो मैं ये देखती हूँ कि भगवान हमारी सोच में, हमारे बोलों में, हमारे कर्मों में कितनी डिविनिटी और कितनी सत्यता और कितना प्यार भर देता है। आज दुनिया में कोई भी शक्ति आपके पास हो या ना हो, एक मधुरता और प्रेम का व्यवहार आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालकर ले जाता है। इतने ढेर मेरे पास अनुभव हैं, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो सारा दिन और रात बीत जाएगी। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि वो जिंदगी ही क्या है जब तक कि हमें इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा का ही ना पता हो। आप बताओ जब तक माँ के वूम में बच्चा चुरपुर नहीं करता तब तक उसका जीवन कहाँ है? तब है उसका जन्म असली, और जब वो शरीर छोड़ता है आत्मा तो वो निर्जीव हो जाता है। सो लाइफ इज ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमस एंड बीइंग, तब ये जीवन है, दोनों का वियोग मृत्यु है, अरथि है। तो हम डॉक्टर्स का इससे बड़ा गहरा संबंध है, तभी हम अपने हर प्रेस्क्रिप्शन में लिखते हैं RX दाऊ रेसिपी, ओ गॉड आई ट्रीट एंड यू क्योर। सो हमें अपने हर जिंदगी के कदम पर उस भगवान को और भगवान की गुप्त शक्तियों को यूज करना है। जिंदगी कहीं ऐसे ही ना बीत जाए, ईश्वर को अपनी जिंदगी में आने दीजिए। तभी कहते हैं, खुदी को जानो तभी तुम खुदा को भी जान पाओगे। इट इज हाई टाइम। साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स आर राइजिंग लाइक एनीथिंग। दवाई बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी सब कुछ आ गया, लेकिन रोग और रोगियों की संख्या कम नहीं हो रही। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे साथियों, आइए और इसका टेस्ट अवश्य लीजिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज एवं मेडिकल विंग, राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, RERF, आपके लिए लेकर आए हैं राजयोग मेडिटेशन कोर्स। आइए इस अंतर मन की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। राजयोग मेडिटेशन कोर्स का आगामी सत्र सोमवार से गुरुवार, मंडे से थर्सडे शाम 7 बजे से 8 बजे तक मेडिकल विंग के फेसबुक पेज facebook.com/medicalwinghq/live व मेडिकल विंग के यूट्यूब चैनल youtube.com/bkmedicalwing/live। ध्यान रहे, इसका ऑनलाइन लाइव प्रसारण होगा। WhatsApp 861-993-7031।